दिनभर तारीख 26 अगस्त दिन बुधवार। मैं हूं विनीत खरे। गुजरात में हिंसा के बाद सेना को बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने शांति की अपील की।
गुजरात राज्य में भी नियंत्रण में है। कुछ ये जो अफवाहें जो हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैला रही है, उसकी वजह से वातावरण जो है उत्तेजित तनावमय हो रहा है।
चीन के स्टॉक मार्केट के धराशायी होने का भारत पर क्या असर पड़ेगा, सुनिएगा इसी पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत के अंश।
Based on what I've seen so far, there is no strong reason to believe we are on the verge of another crisis like we saw.
और सीरिया के पलमायरा शहर पर कब्जे के बाद आईएस के चरमपंथियों ने बालशमीन मंदिर को तोड़ा। आज का दुनिया जहान इसी विषय पर है, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। गुजरात के अहमदाबाद में कल हुए पटेल समुदाय के आंदोलन के बाद स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए सेना को बुला लिया गया है। इस आंदोलन पर काबू पाने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें कुल 3 लोग मारे गए हैं। अहमदाबाद के 9 थाना क्षेत्रों समेत राज्य की 17 जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। आंदोलनकर्ता सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों से अपील की है कि वे कानून और व्यवस्था बनाए रखें। ऑनलाइन पोस्ट किए गए अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य का विकास तभी हो सकता है जब आपस में संवाद हो और लोग एकजुट रहें।
गुजरातना वाला भाइयों ने बहनों, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की सरजमी पर कल शाम से जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें हिंसा को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जानते हैं कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता। ये थे प्रधानमंत्री मोदी के शब्द। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में टीवी के लिए लाइव इंटरव्यू करते हुए 2 पत्रकारों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना बेडफोर्ड काउंटी के ब्रिजवाटर प्लाजा में हुई। पत्रकार एलिसन पार्कर और कैमरामैन एडम वार्ड सीबीए नेटवर्क से जुड़े चैनल WDBJ7 के लिए काम कर रहे थे। इस हमले का मकसद अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि हमले का संदिग्ध मौका वारदात से फरार हो गया। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या से निपटना जर्मनी के लिए एक बड़ी चुनौती है। चांसलर मर्केल पूर्वी जर्मनी के एक शरणार्थी शिविर का मुआयना कर रही थी, जिस पर दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने हमला किया था। चांसलर मर्केल ने प्रवासियों पर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि जर्मनी लोगों के आत्मसम्मान पर चोट और इस तरह की असहिष्णुता को स्वीकार नहीं करेगा। पूर्वी जर्मनी के इस शिविर में जब चांसलर पहुंची तो दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन चांसलर मर्केल ने सबसे अपील की कि सभी जर्मन नागरिक एकजुट होकर काम करें। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। 2 हफ्ते पहले चीन के त्यानजिन की एक फैक्ट्री में हुए भयानक विस्फोट को लेकर चीन के वर्क सेफ्टी नियामक के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया है। देश के सरकारी मीडिया के अनुसार विस्फोट की जांच अभी जारी है। जहरीले रसायन में हुए कई विस्फोटों में कम से कम 139 लोग मारे गए थे। अधिकारियों का कहना है कि अनुशासन और नियमों के उल्लंघन के लिए योंग डोंगलियांग को बर्खास्त कर दिया गया। खबरों के मुताबिक 2 गोदामों के मालिकों ने यांग डोंगलियांग से निजी संबंधों का फायदा उठाकर जहरीले पदार्थों को रखने का सेफ्टी लाइसेंस हासिल किया था। ईरान के वर्ष 2009 के ग्रीन मूवमेंट की एक कार्यकर्ता बाहरे हिदायत की कैद की मियाद को 2 साल और बढ़ा दिया गया है। उन्हें अब तक इस आंदोलन की सबसे लंबी सजा पाने वाली कार्यकर्ता माना जाता था। बाहरे 6 साल की सजा काट चुकी हैं। उम्मीद की जा रही थी कि अब उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 2 साल की कैद की निलंबित सजा उन्हें और काटनी पड़ेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिनभर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। पटेल आरक्षण को लेकर प्रदर्शनों के बाद गुजरात में हिंसा हुई। पुलिस फायरिंग में 3 लोग मारे गए और अब वहां तनाव है। शांति बनाए रखने के लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर में सेना को बुलाना पड़ा है। कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। लोग डर के मारे घरों में बंद हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने राज्य में शांति की अपील की है। पत्रकार अंकुर जैन इस वक्त अहमदाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अंकुर, आप कहां पर हैं, यहां पे आसपास क्या माहौल है, गुजरात में क्या माहौल है और अहमदाबाद खासकर जो शहर है वहां पर सेना का जो फ्लैग मार्च हुआ है उससे लोगों को कितनी तसल्ली बंधी है कि हिंसा की जो वारदातें हुई उस पर कंट्रोल होगा?
अहमदाबाद में 2002 दंगों के बाद आज 13 साल बाद आर्मी का वापस फ्लैग मार्च हुआ है। ये देख के जहां लोगों को लग रहा है कि शायद अब हिंसा थमेगी, लेकिन आर्मी को शहर में कूच करते हुए देखकर पैनिक सा फैला है, लोगों की चिंता और बड़ी है, और अब आम जनता ये चाह रही है कि अब ये जो है ये वायलेंस यहीं थम जाना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार है गुजरात में कि 40 से अधिक पुलिस चौकियों को जलाया गया है। हिंसा अभी भी गुजरात के कई क्षेत्रों में हो रही है, लेकिन आर्मी के आने से, इंटरवीन करने से लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में शांति का माहौल फिर से आ सकता है। अहमदाबाद में खास करके जो ईस्टर्न अहमदाबाद का इलाका है वहाँ पर अभी भी पुलिस और लोगों के बीच में घर्षण अभी भी चल रही है। कई जगहों पर अहमदाबाद दिल्ली रेलवे ट्रैक के बीच के रेलवे ट्रैक्स को तोड़ा गया है, उखाड़ा गया है। तो चिंता अभी भी बनी हुई है, जो सिचुएशन है वो थोड़ी क्रिटिकल है, लेकिन आर्मी के इंटरवीन होने से अहमदाबाद में लग रहा है। लेकिन अहमदाबाद के आसपास जो आउटस्कर्ट्स में नॉर्थ गुजरात के इलाके हैं, खास करके बनासकांठा महसाना, वहाँ अभी भी चिंता की स्थिति बनी हुई है।
जी सर, जनता आम लोगों की जिंदगी पर किस तरह से असर पड़ा है अंकुर? आपने बताया सुरक्षा को लेकर चिंता है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, सामान है, खाने पीने का सामान है, क्या उसको लेकर भी लोगों को चिंता है? क्योंकि शायद कुछ इलाकों में ही सेना ने कर्फ्यू, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, या सेना वहाँ फ्लैग मार्च कर रही है, या फिर पूरे अहमदाबाद का यही हाल है?
नहीं, अहमदाबाद के कुछ इलाकों में, खास करके ईस्टर्न अहमदाबाद के ज्यादा एरियाज में फ्लैग मार्च हो रही है, लेकिन क्योंकि आज गुजरात बंद का ऐलान था, जो पटेल पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने गुजरात बंद का ऐलान किया था, तो ऐलान अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जैसे बड़े शहरों में काफी बड़े हद तक पाला गया था, तो उस वजह से आम जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। और खास करके क्योंकि यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी अफवाहों के चलते, उसके चलते काफी लोग प्रभावित हुए हैं। ऑफिस में अहमदाबाद में मोस्ट ऑफ ऑफिस और स्कूल आज बंद रही थी, जो बड़े मार्केट्स थे वो वगैरह नहीं खुले हैं, तो लोगों का है कि अगर कल भी ये स्थिति बनी रहती है तो जरूरी चीज वस्तुओं के लिए चिंता और बढ़ सकती है।
अहमदाबाद से पत्रकार अंकुर जैन, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और सुरक्षा स्थिति जिसका जिक्र अंकुर कर रहे थे, उस पर पुलिस का पक्ष जानने के लिए संदीप सोनी ने गुजरात के डीजीपी पीसी ठाकुर से बात की।
समग्र गुजरात राज्य में भी नियंत्रण में है। कुछ ये जो अफवाहें जो हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फैला रही है, उसकी वजह से वातावरण जो है उत्तेजित तनावमय हो रहा है। अदरवाइज जो भी डेथ्स हैं, जो पिछले कल अहमदाबाद शहर में पुलिस फायरिंग में दो की डेथ कंफर्म हुई है, और अभी जो है बनासकांठा जिला में गढ़ पुलिस स्टेशन को लोग उन्होंने हमला किया था, उसमें एक व्यक्ति की जान गई है पुलिस फायरिंग में, बिकॉज पुलिस स्टेशन वॉज अटैक्ड। अदरवाइज ओवरऑल द असॉल्ट अटैक हैज ऑन द पुलिस पर्सनल, पुलिस व्हीकल, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, गवर्नमेंट ऑफिस, बाकी कोई इसमें कोई वर्ग विग्रह का कोई एलिमेंट नहीं है, कोई सांप्रदायिक एलिमेंट नहीं।
बताएंगे राज्य में कहां कहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है?
जो कर्फ्यू हमने लगाया है वो एहतियातन लगाया है, प्रिकॉशनरी मेजर तरीके लगाया है। अहमदाबाद शहर के 9 पुलिस स्टेशनों में है, सूरत शहर के 2 पुलिस स्टेशन में है। ये दोनों जो शहर हैं, 9 और 2, जो 11 पुलिस स्टेशन है, ये पटेल बहुल पुलिस स्टेशन है। उसके अलावा फिर महसाना जो है पटेल बहुल जिला है, उसमें 4 पुलिस स्टेशन में कर्फ्यू लगा है। उसके अलावा पाटन में कर्फ्यू लगा है, वो भी पटेल बहुल क्षेत्र है। उसके बाद मोरबी है, उसके बाद 16-17 जगहों पे इस वक्त कर्फ्यू लग चुका है।
कल कुछ आगजनी की खबरें आई थी, इस मामले में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है?
नहीं, उसकी माहिती हमें हमारे पास नहीं है कितने लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन जो भी आगजनी की घटनाएं घटी हैं वो या तो पुलिस चौकियों की, या पुलिस स्टेशन की, या पुलिस व्हीकल्स की, या सरकारी वाहनों की, सरकारी कचेरियों की।
खबरें आई थी कि पुलिस के पास लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं था और पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की, ये
इस मुद्दे पर मैं कोई बहस में पड़ना नहीं चाहता। हर जो मुद्दा होता है उसके अपने पहलू होते हैं, और ये पहलू जो है अगर इंक्वायरी का विषय होता तो इंक्वायरी होती है।
आगे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समग्र राज्य में इस वक्त स्टेट पुलिस स्टैंड जो है स्टैंड 2 पर है। उसके अलावा 53 जो है कंपनी जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज की आ गई हैं, उसमें से 21 आ चुकी हैं, बाकी आना बाकी है, वो शाम तक आ जाए।
अभी ताजा स्थिति क्या है, हालात नियंत्रण में है या अभी भी किसी तरह की?
नियंत्रण में है, हालात नियंत्रण में है, और समाज के जितने भी अग्रणी नागरिक हैं, अग्रणी नेता हैं, और जितने धर्म गुरु हैं विभिन्न धर्मों के, सबकी तरफ से और श्रेष्ठियों की तरफ से लगातार अपील किया जा रहा है कि जो है कानून और व्यवस्था को बनाए रखें, शांति को बनाए रखें, अफवाहों की जद में ना आए।
ये थे गुजरात के डीजीपी पीसी ठाकुर, उनसे बात की थी संदीप सोनी ने। उससे पहले अंकुर जैन से आपने हार्दिक पटेल का नाम सुना। केवल 22 साल की उम्र में गुजरात सरकार की नींद उड़ा देने वाले हार्दिक पटेल को 2 महीने पहले तक बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन गुजरात ही नहीं उत्तर भारत के अनेक नगरों में और सोशल मीडिया पर उनकी खासी चर्चा आज है। हार्दिक पटेल गुजरात के कड़ी तालुका के भाजपा कार्यकर्ता भरत भाई पटेल के बेटे हैं। हार्दिक पटेल से अहमदाबाद में बात की हमारी साथी गीता पांडे ने।
पहले मैं पाटीदार संगठन चला रहा था, सरदार पटेल ग्रुप, विरंगाम में और मांडल तालुका में, जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका है। वहाँ पर 50,000 कार्यकर्ता का हमने संगठन बनाया था। उसी दौरान कुछ लोग हमें कहते थे कि जॉब नहीं मिल रही यार, किसानों को अच्छी फसल पैदा होती तो भाव नहीं मिलते जो चाहिए वो। कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते थे। पिछले 10 साल में गुजरात में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। 10 साल के अंदर जो भी MBBS एडमिशन नहीं मिलता, सिविल में नहीं एडमिशन मिलता, तो उसी दौरान कुछ लोग लड़के भी आत्महत्या करने लगते थे। और उसी दौरान ये पूरा आरक्षण का महाअभियान चल गया। महसाणा में 6 जुलाई को पहली रैली हुई, बाद में मानसा में हमने रैली की गांधीनगर जिले में, वहाँ भी अच्छी खासाखे 25,000 पब्लिक बाहर निकली। बाद में जो विसनगर में हुआ, 50,000 लोग 60,000 लोग बाहर निकल गए और हमला भी हुआ, MLA की कार को जला दिया। सफलता यह है कि इससे संगठन हो गया हमारा। तो उसी दौरान हमने 27% जो OBC कोटा है उसमें हम शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
लेकिन पटेल तो माने जाते हैं कि काफी आपकी रिच कम्युनिटी है, तो इस समय ये मानना क्या जायज है?
हर राज्यों में हर पाटीदार समाज को OBC का लाभ मिल रहा है, गुजरात के पटेलों को यह नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कम्युनिटी हमारी है कुर्मी, बिहार में भी हम हैं। पॉलिटिकल पावर की बात करें तो बिहार के CM हमारे हैं, आंध्र प्रदेश के CM हमारे हैं, UP में सबसे ज्यादा MLA भी हम लोगों के हैं। आज पूरे हिंदुस्तान से MP हमारे ज्यादा है, 117 MP हमारे हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम 27 करोड़ है, गुजरात में भी हम मजबूत है। 5 या 10% लोग समृद्ध होना, पैसे होना, तो पूरे समाज पर ये धब्बा नहीं होना चाहिए। सौराष्ट्र के गांव में चले जाओ तो शाम को चूल्हे पे रोटी नहीं जलती, इतने गरीब लोग हैं। पिछले 10 साल के अंदर किसी भी किसानों ने आत्महत्या की वो सबसे ज्यादा पटेल समुदाय से आते हैं।
2 महीने पहले, मतलब उसके पहले तक आपके बारे में हो सकता है गुजरात में कुछ लोगों ने सुना हो, लेकिन गुजरात के बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना था।
हम यूपी भी गए थे, MP के मैसूर में और धार में भी हमने ये संगठन शुरू करवाया था, कानपुर में भी हमने ये संगठन शुरू करवाया था। विदेश से भी आ रहे, अमेरिका कनाडा से भी लोग हमारे साथ है, महाराष्ट्र से भी कुछ लोग हमारे साथ है। गुजरात से 52 लाख लोगों का सपोर्ट है, गुजरात के बाहर से 3-4 लाख लोगों का सपोर्ट होगा हमसे।
आपके रोल मॉडल कौन है?
मेरे रोल मॉडल सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाला साहब ठाकरे हैं।
आपने कहीं पर ये भी कहा है कि हाँ, हम गांधी की अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम सरदार पटेल की के कदमों में चलना चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह का भी रास्ता ले सकते हैं।
हिंदुस्तान एक क्रांतियों की भूमि है, गुजरात भी क्रांतियों की भूमि है, तो जाहिर सी बात है कि गांधी के संस्कारों पर हमें चलना चाहिए। चंद्रशेखर को भी देखा और भगत सिंह को भी देखा है, तो जाहिर सी बात है पहले बात करो प्यार से, गांधी सरदार बनो, जरूरत पड़ने पर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनो, जरूरत पड़ने पर वो रास्ता भी सही है, कि वो मोमेंट वहीं तक पहुँचने वाला भी नहीं है। और आशा है कि अपने लोग बैठे हैं तो अपने लोग ऐसी मूवमेंट को देखना भी नहीं चाहते होंगे, बहुत जल्द इसका ऐलान होगा।
आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है?
नहीं, मेरे पिताजी भाजपा के कार्यकर्ता है सक्रिय, लेकिन सही मार्गों पर जो अच्छे उन लोगों से हम सहकार थे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, BJP या कांग्रेस से। गवर्नमेंट से बात करने के लिए हम पहले भी, हमारी जो टीम है वो जा रही है, हमारी टीमें मिलेंगी उनसे, जब जरूरत पड़ेगी तब हम गवर्नमेंट से मिलेंगे। हमारी 1,80,00,000 पाटीदारों की मांगे खत्म होंगी, उस दिन आंदोलन भी खत्म हो जाएगा।
आपने बीच में AAP को सपोर्ट किया था, आम आदमी पार्टी को?
नहीं, सपोर्ट तो मैं मुलायम सिंह को भी करता हूँ, जब अच्छी बात, हम खुद नहीं है उसमें, तो राजनीति में आने की बात ही नहीं है।
हार्दिक पटेल से अहमदाबाद में बात की थी गीता पांडे ने। चीन में स्टॉक मार्केट के धराशायी होने के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। भारत में हालांकि माहौल थोड़ा बेहतर है। भारतीय केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन को इसका श्रेय दिया जाता है। रघुराम राजन ने मुंबई में BBC संवाददाता करिश्मा वासवानी से खास बातचीत की, और सबसे पहले करिश्मा ने उनसे पूछा कि क्या चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
स्टॉक मार्केट्स टेंड टू लुक फॉरवर्ड, I think they're seeing a slowdown in China and perhaps they're reacting accordingly.
Stock market aage ki aur dekh kar chalta hai. Mujhe lagta hai ki unhein Chin ki aarthik raftaar mein susti nazar aayi hai. Logon ne isi par pratikriya ki hai. Mujhe lagta hai iske kai karan hain aur wo sabhi karan Chin ke bhavishya ko nahi darsha rahe hain. Unki 7% vriddhi dar ke saath bahut se logon ko ye theek hi lagta hai.
To believe we are on the verge of another crisis like we saw in 97.
अब तक मैंने जो देखा है उसके बाद ये कहने का कोई मजबूत आधार नहीं है कि हम वर्ष 1997 जैसे बड़े आर्थिक संकट के कगार पर हैं।
There's a lot of uncertainty about how what the real numbers are here, right? Because the numbers have to come out.
पिछले कुछ वर्षों में जो कमजोरियां पैदा हुई हैं, हमें उन पर नजर रखनी चाहिए और उनसे सीधा मुकाबला करना चाहिए। अभी तक ये साफ नहीं है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनका सामने आना अभी बाकी है। लेकिन चीन एक बड़ा देश है जो विश्व की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण बन गया है। आज दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई गड़बड़ होती है तो पूरी दुनिया पर उसका कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ता है। ये असर पहले वित्त बाजार पर पड़ता है और उसके बाद व्यापार पर, इसलिए इसे लेकर सबको चिंतित होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है उसे चीन से जोड़ने को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में चिंता की जानी चाहिए। इनमें ये भी शामिल है कि दरें कब सामान्य होती हैं। फेडरल रिजर्व ऐसा करने वाला पहला बड़ा संस्थान हो सकता है। तब भी सवाल यह है कि ऐसा कब होगा। बहुत से बाजारों के स्तर पर भी सवाल है कि क्या वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। भारत चीन के मुकाबले आकार में लगभग एक चौथाई है। ऐसे में अगर हम विकास दर के मामले में चीन से आगे भी निकल जाएं तो भी इसका मात्रात्मक असर बहुत समय तक बहुत कम रहेगा।
आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन से बात की थी करिश्मा वासवानी ने। मुंबई पुलिस ने स्टार टीवी के पूर्व प्रमुख पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को वर्ष 2012 में हुई एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में इंद्राणी के ड्राइवर राकेश राय और उनके पहले पति को भी गिरफ्तार किया गया है। शुरुआत में खबर आई थी कि मृतक शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बहन है, लेकिन अब साफ हुआ है कि मृतक शीना बोरा दरअसल इंद्राणी मुखर्जी की बेटी थी। पीटर मुखर्जी ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है। पीटर मुखर्जी से मुंबई में बात की पत्रकार अश्विन अघोर ने और सबसे पहले उनसे पूछा कि क्या उन्हें पता था कि मृतक शीना उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी हैं?
Of course not. I was aware that she was her sister. Now people are telling me that it's her daughter. I don't know whether to believe that, not believe it until it's proven. कैसे मालूम होगा?
कई कई जगह पे तो ऐसी खबर चल रही है कि उन्होंने पुलिस को बताया कि वो शीना उनकी बेटी थी।
हाँ, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। वो तो मेरे को तो कंफर्मेशन नहीं आया कहीं से।
इतने सालों में आपने कभी मतलब ये जब से 2012 से 12 के बाद शीना के बारे में कभी मतलब क्यूरियोसिटी टाइप नहीं हुआ कि कितने दिन हो गए कोई फोन नहीं, बातचीत नहीं?
नहीं, क्योंकि देखिए मैं शीना से तो रेगुलर बात नहीं करता था। इंद्राणी करते थे, उनका सिस्टर है तो वो बात करते थे। अब मेरे को सिर्फ पूछताछ में मालूम पड़ता था कि सब ठीक है। कभी फोन कॉल आया तो मैं बोला कौन है, बोला शीना है, ऐसे ठीक है।
अच्छा,
फिर मेरे को ऐसे कोई कारण नहीं था कि मेरे को किसी उसमें चीज में शक करने का, तो मेरे को कोई इसमें सस्पेशन नहीं था। तो मेरे को जब उन्होंने बोला कि वो यूएस गए हैं तो मैं ठीक है, अच्छा है यूएस गए हैं तो वहाँ उनका अलायंस बनेगा जो भी है, मेरे को उसमें कोई शक करने का बात नहीं था।
अच्छा,
क्योंकि ऐसे नहीं था कि मैं शीना से हर हफ्ते संडे को शाम को मैं बात करता हूँ और खबर लेता हूँ, ऐसे तो नहीं, यहाँ नहीं था। तो अगर वो मेरा रूटीन था तो अगर वो रूटीन फिर टूटा, फिर मेरे को कुछ महसूस होता कि कुछ खराब है, कुछ गड़बड़ है। जब बात होता है इंद्राणी से और जब मैं कभी पूछा कि कौन था, वो शीना था, सब ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक, खत्म बात। सेकंड बैक चेक करने का कोई मतलब कारण नहीं था।
मतलब आपकी आपकी शादी कब हुई थी इंद्राणी से?
2002
में। ओके, एंड और उनका जो मिखाइल और शीना है, आपसे ये बोल के उनका इंट्रोडक्शन कराया गया था कि वो भाई उनके उनकी बहन और उनका भाई है?
हाँ जी। तो मेरे को जीजू, वो मेरे घर में जीजू बुलाते हैं, तो फिर मैं उनको कैसे मैं बताएगा कि मेरे को क्यों मेरे को शक पड़ेगा कि वो इंद्राणी के भाई बहन नहीं है।
ऐसे भी खबरें आ रही है कि शीना वॉज बीइंग योर सन और ये इंद्राणी को पसंद नहीं था, इसके इसलिए उनमें डिस्प्यूट शुरू हुआ, एक खबर ऐसा आ रहा है। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस?
नहीं, दैट इज करेक्ट। शीना वाज सीइंग माय सन वाज सीइंग शीना। दे वर बोथ ग्रोन अप, दे वर बोथ एडल्ट, and they liked each other, they were living together. अब मेरे को ज्यादा पसंद नहीं था, इंद्राणी को भी ज्यादा पसंद नहीं था, पर सबसे ज्यादा पसंद नहीं था इंद्राणी के पेरेंट्स को। वो मेरे को बताया गया, थोड़ा इंद्राणी के ऊपर प्रेशर डाला कि देखिए इसको ये रिलेशनशिप को ऐसे नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा इसको थोड़ा इन दोनों को समझाओ, कुछ तो करो। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि मैं सोचा मैं इनको यूएस जाने का कुछ प्लान बनाता हूँ। तो उन्होंने यूएस भेजा उनको सीना को। जब मेरे को बताया गया कि सीना अब यूएस गई तो मेरे को फिर से कोई हैरानी नहीं थी। मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि कुछ ऐसे कुछ होएगा कि वो बाहर जाएंगे कुछ और करने के लिए, बॉम्बे से उनको कहीं और भेजना पड़ेगा ताकि इनका रिलेशनशिप नहीं रहे, पर ये मर्डर वर्डर का तो बात कभी आया ही नहीं।
ये थे स्टार टीवी के पूर्व प्रमुख पीटर मुखर्जी। और अब दुनिया जहान। सीरिया के पलमायरा शहर पर कब्जे के बाद इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने बालशमीन मंदिर को तोड़ दिया है। 2000 साल पुराना ये मंदिर यूनेस्को की विरासत था और लाखों सैलानी इसे देखने हर साल पलमायरा पहुंचते थे। इस मंदिर और शहर की उजड़ी विरासत का हाल बता रहे हैं आज निखिल रंजन दुनिया जहान में।
दुनिया जहान। सैकड़ों मीलों तक फैले धूल और रेत का गुबार सीरिया के जिस नखलिस्तान में ठंडी हवा के झोंकों से हार जाता था वो जमीन पलमायरा की थी। लाल रेत के बीच खजूर के पेड़ों की छांव और यूनानी शैली की विशाल इमारतों का शहर सौदागरों को आरामगाह देता और सिल्क रोड को चलते रहने के लिए ऑक्सीजन। रोमन साम्राज्य से पहले और फिर उसके दौर में पलमायरा कारोबारी नगर और सभ्यता संस्कृति का आंगन बनकर उभरता रहा, लेकिन ये तब की बात है जब कारोबार जमीन के रास्तों पर चलता था। डॉक्टर अली खान महमूदाबाद सीरिया के जानकार हैं और पलमायरा जा चुके हैं।
बहुत ही खूबसूरत इलाका है, धरती वहाँ की बिल्कुल लाल है, वहाँ खजूर के दरख्त हैं तो उससे एक हरियाली आती है। दूर पर एक छोटा सा पहाड़ है, उस पर एक ड्रूज शहजादे का किला था, फखरुद्दीन अलमानी उसका नाम था। असल में वो पूरा इलाका जो सीरिया का है वो एक ऐसा इलाका है जो एक तरह से चौराहा था यूरोप अफ्रीका अरब दुनिया और साउथ एशिया वगैरह। एक जमाने में जब तिजारत होती थी, जब बिजनेस और कॉमर्स होती थी तो वहीं से सब काफिले गुजरते थे।
बीते 19 सदियों में वक्त के साथ बदलती राजनीति और भौगोलिक दशाओं की मार झेलकर भी पलमायरा में जो कुछ जिंदा बचा रहा इस्लामिक स्टेट उसे खत्म करने में जुटा है। इस बात पर अभी विवाद है कि बालशमीन एक महीने पहले बारूद से उड़ाया गया या 3 दिन पहले, लेकिन 1000 से ज्यादा ऊंचे खंभों और विशाल मेहराबों वाले मंदिर का ज्यादातर हिस्सा अब धूल में मिल चुका है, ये खबर पक्की है। दुनिया भर के सैलानी उस धर्म से जुड़ी इमारत को देखने आते थे जिसके अस्तित्व का निशान ढूंढने के लिए कम से कम 1500 साल पीछे जाना होगा। ईसाइयत और इस्लाम के आने के बाद धर्म तो बदल गया लेकिन मंदिर खड़ा रहा।
ये बालशमीन का टेंपल जो था ये एक नॉर्थ वेस्ट के सेमिटिक गॉड, इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर एक ही गॉड को कई नामों से पहचाना जाता था। जो नाम बहुत मशहूर हुआ वो हद्दाद का नाम था। बालशमीन जो थे दो सुप्रीम गॉड में से एक का था, बालशमीन स्काई गॉड थे प्री इस्लामिक पैलमीरा में, और बेल दूसरे सुप्रीम गॉड थे, तो उस जमाने में दो थे। ये मंदिर रफ्ता रफ्ता बना तकरीबन 2000 साल पहले। ये अभी तक के साफ नहीं है कि बालशमीन सूरज भगवान को कहा जाता था या उन भगवान को जिनके जरिए बारिश होती थी।
2000 साल पुरानी इमारत के अवशेषों को मिटाने के लिए इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने ढेर सारा बारूद खर्च किया। आखिर इन लोगों की इस ऐतिहासिक इमारत से क्या दुश्मनी है? मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा।
वो टेरर फैला देते हैं, बीहेडिंग करके औरतों को बेचना, उनकी तस्वीरें छापना, बीहेडिंग दिखाना यूट्यूब पे डालते हैं। टेरर से इनको बड़ा फायदा हुआ, इन्होंने बहुत किया और टेरर इनका सेंट्रल पॉइंट है। ये हमेशा से इस तरह की संस्थाएं जिनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होती सोसाइटी के अंदर, जो इलेक्शन या उसके जरिए पावर में नहीं आ पाते, उनका हमेशा ये होता है कि किसी भी सूरत से आप आतंक फैला दो और दहशत के जरिए ये सत्ता को कब्जा करने। ये पहले एक्सपेरिमेंट तालिबान ने किया था, इसमें जितना परफेक्शन मैं समझता हूँ आईएसएस को मिला है इतना किसी संस्था को नहीं मिला, क्योंकि इसके पास यूरोप से जो लड़के लड़कियां के इनको ज्वाइन किया है उनके पास काफी इसकी नॉलेज थी, बड़े बड़े ग्रुप्स थे जो उनके मीडिया को मैनेज कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं।
Thank you. मई के महीने में जब इस्लामिक स्टेट ने पलमायरा पर कब्जा किया, तभी से शहर के भविष्य को लेकर आशंकाएं उठने लगी थीं। तालिबान ने सालों पहले बामियान में बुद्ध की विशाल मूर्तियों को मिटाकर जो सिलसिला शुरू किया, वो इस साल इस्लामिक स्टेट के हाथों इराकी शहर मोसुल और निमरूद के विशाल म्यूजियम और लाइब्रेरी की तबाही के रूप में सामने आया। अमरीका में निर्वासित जीवन बिता रहे सीरिया के प्रोफेसर अम्र अल अज़्म दुखी मन से कहते हैं,
This is part of their what we refer to as a repertoire of atrocities, cultural, and this is part of their cultural heritage.
ये उनकी सांस्कृतिक विरासत पर अत्याचारों का हिस्सा है, जो आमतौर पर दो साफ संदेश देने के लिए किया जाता है। एक तो उनकी माफी से मुक्त हरकतों को दिखाने के लिए, और दूसरा ये दिखाने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन्हें रोकने में नाकारा है। इन दोनों का संयोग बहुत ताकतवर है और आमतौर पर तब किया जाता है जब इस्लामिक स्टेट को जंग के मैदान में हार मिलती है।
संयुक्त राष्ट्र ने बाल शमीन मंदिर को उड़ाना युद्ध अपराध माना है, लेकिन जानकार इसे सिर्फ ताकत का प्रदर्शन या इस्लामी शुद्धता को लागू करने की सनक नहीं मानते। कमर आगा इसकी कारोबारी वजहें भी बताते हैं।
इससे जुड़ा हुआ एक ट्रेड भी बहुत बड़ा है आजकल। इसके बड़ी बड़ी इमारतें और बिल्डिंगें तो गिरा देते हैं, लेकिन छोटी मूर्तियां और दूसरी चीजें इस किस्म की होती उनको इन्हीं ने, हमने देखा पहले मोसुल में भी और दूसरी जगहों पे भी, इन्हीं ने उनको बेची और पैसा इकट्ठा किया। इन सभी एक तो धार्मिक इसका फैक्टर है और दूसरा ये कि पैसा इकट्ठा करना भी। खासतौर से ISIS जो है वो हर तरीके से कोशिश करता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, बैंक को भी इन्हीं ने लूटा है और वहाँ के तेल का भी ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पे इनके कब्जे में है, फिर ड्रग रनिंग भी ये करते हैं और औरतों को भी इन्हीं ने स्लेव बना के उनको बेचा है।
चार दशक तक पलमायरा के विशाल खंभों की ओट में रहकर उन्हें संवारते रहने वाले आर्कियोलॉजिस्ट खालिद अल असद का इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने सिर काटकर चौराहे पर टांग दिया, लेकिन उन्होंने उन अनमोल मूर्तियों का पता नहीं बताया जो वहां से पहले ही हटा दी गई थीं। समय बदला तो कारोबार पानी और हवा के रास्तों पर सवार हो गया और दूसरी सदी के चमचमाते पलमायरा की रौनक घटने लगी। हालांकि यूनेस्को के विरासतों की सूची में शामिल होने के लिए उसके पास तब भी बहुत कुछ था। डॉक्टर अली खान,
सीरिया में इस वक्त 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 5 इस जंग और खाना जंगी और सिविल वॉर की वजह से जो है उन पर बहुत नुकसान हुआ है, अलेपो का किला भी, और ये जो मंदिर अभी इसको बम से उड़ाया गया है, ये बहुत ही कम ऐसे नमूने रह गए थे जिनके जरिए से हम एक गुजरे हुए धर्म को समझ सकते थे।
बाल शमीन के मंदिर को देखने हर साल 1.5 लाख से ज्यादा सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। इस्लामिक स्टेट के शासन में कोई यहाँ आने का जोखिम तो यूं भी नहीं उठाएगा, लेकिन अगर कोई भटकता रही यहाँ पहुँच गया तो उसे सन्नाटों के गुबार में दम तोड़ चुकी विरासत की चीखें तो सुनाई देंगी ही। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
और कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। गुजरात के अहमदाबाद में कल हुए पटेल समुदाय के आंदोलन के बाद स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए सेना को बुला लिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों से अपील की है कि वे कानून और व्यवस्था बनाए रखें। अमरीका के वर्जीनिया राज्य में टीवी के लिए लाइव इंटरव्यू करते हुए 2 पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हमले का मकसद अभी साफ नहीं हो पाया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि प्रवासियों की बढ़ती संख्या से निपटना जर्मनी के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2 हफ्ते पहले चीन के तियानजिन की एक फैक्ट्री में हुए भयानक विस्फोट को लेकर चीन के वर्क सेफ्टी नियामक के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया है। ईरान के वर्ष 2009 के ग्रीन मूवमेंट की एक कार्यकर्ता बहरे हिदायत की कैद की मियाद को 2 साल और बढ़ा दिया गया है। उन्हें अब तक इस आंदोलन की सबसे लंबी सजा पाने वाली कार्यकर्ता माना जाता था। बहरे 6 साल की सजा काट चुकी हैं। उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें अब छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 2 साल की कैद की निलंबित सजा और काटनी पड़ेगी। बहरे 2009 में एक छात्र कार्यकर्ता थी और तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के दोबारा चुने जाने का विरोध करते वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया था। शंघाई में शेयर की कीमतों में गिरावट आज भी जारी रही, लेकिन एशिया के कुछ शेयर बाजारों में बढ़त भी दर्ज की गई। यूरोप में भी बाजार में गिरावट देखी गई, लेकिन ये गिरावट पहले से कहीं कम थी। BBC समाचार।
समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना, मैं हूँ विनीत खरे और स्टूडियो संभाला था देवाशीष कुमार ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी ठीक 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में।